मिस्टर मुखर्जी से मीटिंग करने के बाद निक, एमा, रॉन, आलिया और जैन घर वापस आ गए। वो लोग घर तब तक पहुंचे जब तक सुबह हो चुकी थी। निक ने जिद करके अपनी बात मनवाही ली थी और वो अपने अलग घर में रह रहा था। घर आते ही वो हॉल में लगे सोफे पर सो गया। जैन किसी काम से उसके पास आया था। उसने निक को सोते हुए देखकर कहा, भाई भी ना, शूज़ पहनकर ही सो गए। खुद से बात करते हुए जैन उसके शूज़ निकालने लगा। लगता है भाई थोड़ा ज्यादा ही थक गए जो आते ही सो गए। घर भी कितना गंदा पड़ा है। सोचा था यहाँ आएंगे तो थोड़ा ध्यान भटकेगा, लेकिन नहीं, यहाँ आते ही एक नई टेंशन शुरू हो गई। क्या सच में वो प्रियल है? अगर है तो वो वहाँ पर कैसे फंस गई? पर वो प्रियल कैसे हो सकती है? चांदनी और निधि ने बताया था कि जन्नत बोल नहीं सकती, पर हमशक्ल तो सिर्फ टीवी सीरियल्स में ही होते हैं, रियल लाइफ में थोड़ी ना होते हैं। अगर कोई हमशक्ल होता भी है तो वो जुड़वा भाई बहन ही हो सकते हैं। क्या प्रियल की बहन है वो जन्नत? बस अब तो प्रियल मिल जाए तो अच्छा है। मुझसे भाई की ये हालत और नहीं देखी जाती। काश मैं उस दिन वहां पर होता तो कभी भी उसे वहां से नहीं जाने देता। जैन अपनी उधेड़ बुन में खोया हुआ खुद से बात कर रहा था। निक को सोता हुआ पाकर वो वहां से वापस चला गया। वहीं उनके पास मौजूद दूसरे फ्लैट में सुबह सुबह एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उस घर में एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसका नाम चंद्रकांत बैनर्जी था, वो अपनी 19 साल की बेटी के साथ रहता था। चंद्रकांत जी ने अपनी बेटी को आवाज लगाते हुए कहा, मीरा, अरे ओ मीरा, कहाँ खोई हो सुबह से? अपने बाबा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं। हम लगा तुमने खाने के लिए कुछ बना दिया होगा, लेकिन किचन में तो कुछ नहीं बना। नहीं बाबा, समय का कुछ पता ही नहीं चला, मीरा ने कहा। समय का तो तब पता चलेगा ना जब तुम इस खिड़की से उठोगी। बेटा, क्या सारे दिन बाहर देखती रहती हो? चंद्रकांत जी ने कहा और मीरा के पास आकर बैठ गए। बाबा, मैंने आपको बताया था ना कि हमारे बगल में कोई रहने आया है, बस उन्हीं को देख रही थी, चंद्रकांत ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ, तो तभी हमारी नन्ही सी मीरा का दिल उनसे बात करने के लिए मचल रहा है। बेटा, कितनी बार समझाया है तुम्हें कि नए लोगों पर भरोसा मत किया करो। हम उन्हें नहीं जानते कि वो कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, मीरा ने कहा। हाँ बाबा, वही तो मैं बोल रही हूँ। जब तक हम उन्हें जानेंगे नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा कि वो लोग कैसे हैं? चंद्रकांत जी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा कर रह गए। वो वहां से उठे और किचन की तरफ बढ़ने लगे कि तभी मीरा ने पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, मैं उनसे मिलकर आऊं प्लीज बाबा। चंद्रकांत जी ने कहा, अच्छा चली जा, मैं मना करूंगा तो कौन सा तू रुक जाएगी। और सुन, जाते जाते उनके लिए मीठा दोई ले जाना। उनके ये कहते ही मीरा दौड़कर उनके पास आई और गले लगते हुए कहा, आमी तुम्हा को खूब भालोबाशी बाबा। चंद्रकांत ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ पता है, जल्दी आ जाना, मैं हम दोनों के लिए नाश्ता बना रहा हूँ, उसके बाद मुझे भी वीडियो कॉल पर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। मीरा ने उनकी बात पर हामी भरी और रेफ्रिजरेटर से एक छोटी सी मिट्टी की हांडी में मीठा दोई लेकर बाहर आई। मीरा ने सामने की तरफ देखकर कहा, यहाँ तो दो घर हैं, कौन से वाले में होगा मेरा वो नीली आंखों वाला हीरो? लगता है दोनों में जाना पड़ेगा, पहले इसमें ट्राई करती हूँ। मीरा गलती से उस घर में चली गई जहाँ पर रॉन, एमा, आलिया और जैन ठहरे थे। आलिया और रॉन घर की सफाई कर रहे थे जबकि एमा और जैन उन सबके लिए खाना बना रहे थे। वो लोग अपने काम में खोए हुए थे कि तभी डोरबेल बजी। आलिया ने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, इस वक्त कौन आया होगा? रॉन ने कहा, निक या अंकित में से कोई होगा, वैसे मैंने निक के लिए मैसेज छोड़ा था कि खाना बनने वाला है तो यहाँ आ जाए। आलिया ने दरवाजा खोला तो सामने मीरा खड़ी थी। दरवाजा खुलते ही मीरा ने मुस्कुराकर कहा, आमी मीरा, अरे मैं मीरा हूँ, आपकी नेबर। आलिया ने उसे देखकर कहा, हाँ हाँ अंदर आओ ना, हम लोग वैसे सफाई कर रहे थे। मीरा और आलिया अंदर आईं। उसकी आवाज सुनकर एमा और रॉन, जैन बाहर आए। मीरा को बाहर देखकर एमा ने फुसफुसाते हुए जैन से कहा, आलिया भी ना, इस लड़की को क्यों अंदर लेकर आई है? अगर गलती से भी निक से यहाँ देख लिया तो वो हम सब पर चिल्लाएगा। मैं भी यही सोच रहा था, जैन ने बहुत धीरे से बोला। वो लोग मीरा से मिल ही रहे थे कि तभी वहां पर निक आया। उसे नहीं पता था कि वहां पर मीरा आई हुई है। निक के हाथ में शर्ट था और उसने चिल्लाते हुए कहा, आलिया, कितनी बार कहा था कि मेरे कपड़े प्रॉपरली डालना, देखो ना इनके बटन तक निकले हुए हैं। बोलते हुए उसकी नज़र मीरा की तरफ पड़ी। उसने मीरा को देखकर कहा, ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मीरा हूँ और यहाँ आपके लिए मीठा दोई लेकर आई थी। निक ने चिढ़ते हुए कहा, तो मिस मीरा, अपनी इस मीठे दोई को यहाँ से चली जाओ। बोलते हुए उसकी आवाज़ थोड़ी तेज हो गई, गेट लॉस्ट और वापस कभी यहाँ नजर मत आना। निक की बात सुनकर मीरा का चेहरा उतर गया। ये हैंडसम हीरोज हमेशा खड़ूस टाइप के ही क्यों होते हैं? भले ही शक्ल अच्छी हो पर दिल, मीरा ने अपने मन में सोचा। उसने आगे कुछ नहीं कहा और अपने उदास चेहरे के साथ वहां से घर चली आई। मीरा का उतरा हुआ चेहरा देखकर चंद्रकांत जी उसके पास आए और पूछा, क्या हुआ, तू तो वहां पर मीठा दोई लेकर गई थी ना? मीरा ने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा,
बाबा, वहां पर वो लोग अभी सफाई कर रहे थे। वहां बहुत गंदगी फैली थी, तो मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकी। उन्होंने मुझसे कहा भी रुकने को, लेकिन मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि जब भी उन्हें टाइम मिलेगा तो आपसे मिलने घर पर जरूर आएंगे। चंद्रकांत ने कहा, अरे वाह, लगता है भले लोग हैं, वरना इस जमाने में किसी को कहां फुर्सत की किसी के घर जाकर उनसे मिले। सॉरी बाबा, अगर सच बोलती तो आपको बुरा लगता, मीरा ने चंद्रकांत जी की तरफ देखकर सोचा। थोड़ी देर पहले निक के साथ जो भी कड़वे अनुभव हुए थे, मीरा उन्हें भूलकर सामान्य बातचीत करने की पूरी कोशिश कर रही थी। निक के मीरा पर चिल्लाने पर वो सभी लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। इससे पहले उसने किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। रॉन ने कहा, निक वो क्या था, इट वॉज वेरी रूड। निक ने जवाब में कहा, आप लोगों को भले ही रूड लग रहा होगा, लेकिन शायद तुम लोग भूल रहे हो कि हमें सीक्रेसी मेंटेन करनी है। आलिया ने कहा, पर भाई वो लड़की अच्छी थी, मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। कल भी जब हम आए थे तो वो खिड़की से हमें देख रही थी, निक ने कंधे उचकाते हुए कहा। अंकित ने कहा, निक तेरा कहना भी सही है, पर इस तरह किसी की इंसल्ट करना तो गलत बात है। अब जब वो यहां तक आ ही गई है तो थोड़ी जान पहचान हो भी जाती है तो क्या दिक्कत है। मैं यहां किसी से जान पहचान बनाने नहीं आया हूं, अब खाना मिल सकता है, जैन ने उसकी हां में हां मिलाते हुए कहा। चलो खाना खाते हैं, फिर आगे की प्लानिंग भी तो करनी है। आलिया, खाना बन गया। अब जब खाने का टाइम हो गया तो इसे हमारी याद आ गई। जैन, क्या तुम्हारे भाई के सेपरेट घर में सेपरेट किचन नहीं है, एमा ने मुंह बनाते हुए कहा। ऑफ कोर्स है, लेकिन मेरा घर अभी तक क्लीन नहीं हुआ, उसके बाद मैं अपने आप देख लूंगा, निक ने उसी अंदाज में जवाब दिया। एमा ने कहा, हाँ जाकर करो अपना घर साफ, मैं भी नहीं करने वाला, निक ने कहा। उन दोनों के बीच बहस बढ़ती देख जैन ने कहा, आलिया प्लीज तुम कर दोगी। आलिया ने कहा, मुझसे नहीं होगा, ये घर भी मैंने ही साफ किया है। वो सब लोग घर साफ करने के लिए झगड़ा कर रहे थे कि तभी मीरा बाहर जाने के लिए घर से निकली। उसे उनकी आवाज सुनाई दी। मीरा घर के बाहर खड़ी होकर उनकी बात सुनने लगी।
मीरा ने हंसते हुए कहा, वैसे इतना भी खड़ूस नहीं है, कितना प्यारा है कि किसी को देखते ही इससे प्यार हो जाए, मन करता है कि उसकी नीली आंखों में खो जाऊं। मीरा कहाँ रह गई बेटा, चंद्रकांत जी अपने घर के अंदर से मीरा को ढूंढते हुए चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज सुनकर मीरा ने जल्दी से खुद को संभाला और भागकर अपने घर की तरफ चली गई। अंदर वो लोग अभी तक इसी बारे में बहस करते जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जन्नत बाजार में सुनहरी से मिलने के बाद इस बात को अच्छे से समझ गई थी कि उससे उसे काफी फायदा हो सकता था, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले वो उसके बारे में सारी जानकारी पता करना चाहती थी। सुनहरी अपने कमरे में सरजी और एक लड़की के साथ मौजूद थी। वो लड़की भी जन्नत बाजार में काम करती थी, लेकिन पिछले कई सालों में वो सुनहरी के आगे पीछे घूमकर अपनी अच्छी खासी पैठ जमा चुकी थी। सुनहरी भी उस पर पूरा विश्वास करती थी और कोई भी जरूरी फैसला उसी से सलाह मशविरा करने के बाद लेती थी। सुनहरी ने कहा, तू बता रूपाली क्या फैसला लें। रूपाली ने जवाब में कहा, देख ताई, सब कुछ तेरे पर निर्भर करता है। मैं तो कहती हूँ कि पहले उनको परखो कि कहीं सच में पैसा वैसा है या फिर ऐसे ही मज़े लूटने आए हैं। सरजी ने बीच में बोलते हुए कहा, अरे मैंने पता लगाया है कि वो बहुत पैसे वाले हैं। रूपाली ने उसे आंख दिखाते हुए कहा, अरे तू चुप कर, दो कौड़ी का दलाल, तेरे आगे कुछ पैसे आ गए तू तो बस उन्हीं का हो गया। आजकल पुलिस का भी बहुत चक्कर रहता है, क्या पता कोई रेड मारने के लिए कोई स्टिंग ऑपरेशन वगैरह करवा रहा हो। हालांकि रूपाली ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जन्नत बाजार में मौजूद लड़कियों में वो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इस वजह से सुनहरी की नज़र में उसकी खास जगह थी। सुनहरी ने कहा, रूपा बात तो तेरी बिल्कुल सही है, पता तो चले कि हैं कौन ये अमीरजादे जिन्हें अचानक जन्नत बाजार खरीदने की धुन सवार हो गई। बोलते हुए सुनहरी ने सरजी की तरफ देखा और कहा, कुछ सीख इससे। अरे यही वजह है कि मैं इस पर आंख बंद करके भी भरोसा कर लेती हूँ, तेरी तरह नहीं जो चार पैसे नहीं दिखे कि मुंह मारने पहुंच गया। सरजी ने कहा, ताई आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने उन लोगों के नाम और पता पूछ लिया है। अरे अभी बोला है उस लड़के को, आ रहा है अपना लैपटॉप लेकर सर्च करने, सब पता चल जाएगा कि वो लड़के सच भी बोल रहे हैं या ऐसे ही फिजूल की बातें कर रहे हैं। रूपाली ने कहा, कौन से लड़के को बोला है रे, पता है ना कि यहाँ पर हर किसी को आने की इजाज़त नहीं है। सरजी ने एक आंख दबाते हुए कहा, हर किसी को नहीं बुलाया है, मुकेश को आने को बोला है। मुकेश का नाम सुनकर रूपाली के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अंदर आ जाऊं ताई, एक लड़के ने दरवाजा खटखटाते हुए पूछा। सुनहरी ने अपने हाथ से उसे अंदर आने का इशारा किया, उसने हाथ में लैपटॉप ले रखा था, आते ही वो अपने काम पर लग गया। क्या नाम बताया था आपने, उसने पूछा। सरजी ने कहा, एन जॉनसन, और दूसरा वाला उसका मैनेजर था। मुकेश ने लैपटॉप में देखकर कहा, बाबा रे कितना अमीर है ये आदमी, ये देखिए ताई, लंदन में, अमेरिका में, यहाँ तक कि अपने भारत में भी इसकी कितनी सारी संपत्ति है। बोलते हुए मुकेश की आंखें बड़ी हो गईं। अब क्या बोलती है तू रूपा,
सुनहरी ने रूपाली की तरफ देखकर पूछा। रूपाली ने अपनी तसल्ली के लिए लैपटॉप में आ रही एक एक तस्वीर को देखा और फिर कुछ देर बाद सोचकर बोला, ये सब तो नकली भी बनाई जा सकती है। माना कि मैं सिर्फ 12वीं पास हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी पता है। तो क्या मैं उन्हें सीधे सीधे मना कर दूँ? सुनहरी ने पूछा। रूपाली ने जवाब देते हुए कहा, सीधे सीधे मना करना तो बेवकूफ़ी होगी ताई। हम उनका टेस्ट लेंगे, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। कैसा टेस्ट? सरजी ने हैरानी से पूछा। ये हम तुम्हारे सामने नहीं बताएंगे, मैं ताई से इस बारे में बात कर लूंगी, तू बस उन्हें आज रात को आने को बोल देना। बोलते हुए रूपाली के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट थी। सरजी ने उनके सामने हाथ जोड़े और फिर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मुकेश भी वहां से उठकर जाने लगा तो रूपाली ने उसे पीछे से आवाज देते हुए कहा, अरे तू कहां जा रहा है? तू बाहर रुक, मैं अभी आती हूँ। मुकेश ने उसकी बात पर हामी भरी और उस कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही रूपाली ने सुनहरी को वो सब कुछ बता दिया जो उसके दिमाग में चल रहा था। प्लान तो तेरा एकदम टकाटक है, अब कल जब वो आएंगे तो अच्छे से पता चल जाएगा कि सच में उनकी बात में दम है या यूं ही फिजूल की बातें कर रहे हैं, सुनहरी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्रमशः